जय मसीह की जी। खुदा यीशु मसीह के कादर नाम में आप तमाम को सलाम, और बिलखसूस मैथ्यू भाई और सिस्टर नेहा को और बहुत बहुत सलाम। सलाम का मतलब है आप पर सलामती होती रहे, और शादी की जो आप एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उन तमाम बरकतों के लिए जो शुक्रगुजारी की दुआ का आपने एहतमाम किया है, खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ने आपके दिल पर यह बोझ डाला कि आप अपने तमाम अजीजों को बुलाएं और खुदावन की हुजूरी में शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजराने, क्योंकि शुक्रगुजारी जो है ये खुदा को पसंद है। किताब मुकद्दस में ढेरों जगह पर जो है वो शुक्रगुजारी के ताल्लुक से जो है वो लिखा हुआ है, बयान किया गया है, और ये खुदा की धड़कन है। दर हकीकत खुदा तवक्को करता है, एक्सपेक्ट करता है कि उसके लोग जब खुदा उन्हें बरकत दे रहा हो किसी भी हवाला से, वो आपकी मुआशी जिंदगी है, वो आपकी माशरती जिंदगी है, वो आपकी अज़दवाजी जिंदगी है, वो रूहानी है, कुछ भी क्यों नहीं है, जब खुदा किसी भी एरिया में हमें ब्लेस करता है, बरकत देता है, तो वो फिर एक्सपेक्ट करता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। आमीन। और ये बिलखसूस आज अज़दवाजी जिंदगी की शुक्रगुजारी कि खुदावन ने 26 साल आपको उस अहद पर कायम रहने का फजल अता फरमाया है जो आज से 26 साल पहले आपने किया था। और ये बड़ी उत्तम बात है, ये बड़ी एक कह लीजिए खूबसूरत बात है कि हम उस अहद के पाबंद हैं जो अहद हमने खुदा की हुजूरी में किया होता है, खुदा के गवाहों की हुजूरी में किया होता है और एक दूसरे से किया होता है। ये दयानदारी, ये मोहब्बतें, ये उन तमाम तर चुनौतियों पर गालिब आती हैं जो किसी भी शादीशुदा जिंदगी को दरकार होती हैं या दरपेश होती हैं। और मैं शुक्रगुजार हूं सिस्टर नेहा के लिए, भाई के लिए और बच्चियों के लिए कि खुदावंद ने तन्हा को खानदान की शक्ल दी है और फिर ये खानदान जो है वो अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहा है। आमीन। और खानदान के ताल्लुक से चंद एक बातें सीखेंगे कि खानदान जो है जब खुदा तन्हा को खानदान बनाता है। मुझे चंद लम्हों के लिए आपकी अटेंशन चाहिए, आप हमेशा जो है वो कलाम सुनते हैं, सुनने वाले हैं, खुदावंद आपको और ज्यादा बेहतर समात अता फरमाए, समात आपकी जो है ये बेहतर तौर पर सुनती चली जाए, क्योंकि कलाम जो है ये हमारे कदमों के लिए चिराग है, हमारी राह के लिए रोशनी है, और अगर मैंने इसे अपने दिल में रखा हुआ है, आपने इसे दिल में रखा है, तो हम अपनी तमाम तर कोताहियों के बावजूद, हम अपनी तमाम तर कमजोरियों के बावजूद खुदा के कलाम के वसीला से अपनी उन तमाम तर आजमाइशों पर गालिब आते हैं जो हमारे लिए हमारी राहों में पड़ी होती हैं। तो खुदावन का शुक्र हो कि कलाम जो है ये हमें मुनव्वर करता है, कलाम हमें जोर देता है, कलाम हमें संभालता है, और ये कलाम के बाबत लिखा हुआ है कि चट्टान पर अकलमंद ने अपना घर बना लिया। क्या बना लिया? चट्टान पर, यानी ऑन द माउंटेन। अगर चट्टान पर वी एस्टैब्लिश आवर होम ऑन द माउंटेन, ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, ऑब्वियसली हमें मालूम है कि नथिंग कैन पुल इट डाउन, कोई चीज उसे गिरा नहीं सकती, कोई चीज उसके खिलाफ नहीं है। तूफान, मुसीबतें, बारिशें, आंधियां, अगर तूफान आएंगे तो वो शर्मिंदा हो जाएंगे। आमीन। मुसीबतें आएंगी तो शर्मिंदा हो जाएंगी, मगर हमें ये देखना है क्या हमारी कोई भी जिंदगी की किस्म क्यों नहीं है। जैसे मैंने कहा, अज़दवाजी जिंदगी है, मुआशी है, मुआशरती है, रूहानी है, जिस्मानी है, तालीमी है, कोई भी क्यों नहीं है, अगर फाउंडेशन जो है खुदा का कलाम है और खुदा से कनेक्टिविटी है, तो याद रखिए तूफान कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आमीन। तो चंद बातें खानदान के यूनिट के ताल्लुक से सीखेंगे कि किसी भी खानदान में दुआ की क्या अहमियत है, क्योंकि खुदावन ने भाई मैथ्यू को एक खानदान बनाया और वो उसी खानदान की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उस अहद की सेलिब्रेशन है जिससे खानदान जन्म लेता है, क्योंकि अगर वो अहद ना करते, अहद पर कायम ना रहते, तो खानदान की शक्ल नहीं बननी थी। तो खुदावन ने उन्हें खानदान की शक्ल दी है और वो खानदान कायम है, और खानदान के क्याम में और कौन सी चीजें बेहतर काम और कार फरमा होती हैं, हम उनमें से एक पर बात करेंगे, और वो है दुआ। दुआ और खानदान जो है इनका चोली दामन का साथ है। अगर आप बिब्लिकल क्रिश्चियन हैं, अगर आप मसीही हैं, किताबी मसीही हैं, यानी बाइबली मसीही हैं, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि दुआ जो है वो किसी भी ईमानदार की रूहानी जिंदगी का चलता हुआ सांस है। इट्स ए ब्रेथ, स्पिरिचुअल ब्रेथ की कंटिन्यूटी के लिए आपको दुआ चाहिए। जैसे किसी भी फिजिकल बॉडी के قیام کے لیے, سسٹیننس کے لیے دعا جو ہے, آکسیجن جو ہے وہ ایک اہم ترین ایلیمنٹ ہے. بالکل اسی طرح سے اسپرچل لائف کے لیے, ایک خاندان کے لیے اور خاندان کی مضبوطی کے لیے, خاندان کی ترقی کے لیے اور خاندان کے قیام کے لیے دعا جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دعا جو ہے وہ بڑی ایک کلیدی کام, جو ایک کہہ لیجیے کنجی کا کام کرتی ہے. اور دعا کے تعلق سے تین چیزیں میں ڈسکس کروں گا, اور میں چاہوں گا کہ پلیز آپ اسے ایک چیلنج کے طور پر لیجئے گا. اگر میری اور آپ کی لائف میں کہیں نہ کہیں, بطور خاندان بات کر رہا ہوں, ایز اے فیملی بات کر رہا ہوں, اگر دعا کی کمی ہے تو یاد رکھیے طوفانوں کی زیادتی ہے. یعنی ایبسنس آف پریئر مینز ابنڈنس آف سٹارمز. ٹھہرو, طوفان ہوں گے, اور پھر طوفان ہوں گے ہی نہیں بلکہ طوفان مؤثر ہوں گے, افیکٹو ہوں گے, وہ گرانے میں کامیاب ہوں گے, وہ دھمکانے میں کامیاب ہوں گے, وہ تباہ کرنے میں کامیاب ہوں گے, وہ برباد کرنے میں کامیاب ہوں گے. کیوں؟ بیکاز دیر از این ایبسنس آف پریئر. پریئر جو ہے یہ خاندان کے لیے انتہائی ضروری ہے. یشوا نے, یشوا کی کتاب بک آف جاشوا چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 15 میں لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل سے وہ بات کر رہا تھا, جشوا وہ قوم سے بات کر رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ تم آج کے دن فیصلہ کرو کہ who you are going to worship, تم کس کی عبادت کرو گے. اگر تم دیوتاؤں کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو آج فیصلہ کر لو, اور اگر یہوہ کی عبادت کرنی ہے تو آج فیصلہ کر لو. اٹس اپ ٹو یو ایز اے فیملی, یو ہیو ٹو میک اے ڈیسیژن ہو وی آر گوئنگ ٹو ورشپ. ہم کس کی عبادت کریں گے, اپنے حالات کی, اپنے مخالف کی, اپنے دشمن کی, یا یہوہ پاک خدا کی. اور اس کی عبادت کے لیے کنیکٹیوٹی چاہیے, اور کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے پریئر سے. آپ کسی بھی شخص سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں, یو نیڈ ٹو ہیو اے کمیونیکیشن. آپ سیل فون کو یوز کرتے ہیں, اگر وہ کہیں بھی رہ رہا ہے, ویئر ایور سمبڈی از لیونگ, ڈز ناٹ میٹر. کیوں؟ کیونکہ کیا ہے, آپ کے پاس کنیکٹیوٹی ہے, اور وہ سیل فون ہے, وائرلیس فونز ہیں, اور کنیکٹیوٹی کے لیے, بات چیت کے لیے آپ کے پاس ایک میڈیم ہے جو لوگوں کو کنیکٹ کرتا ہے. بالکل اسی طرح سے اگر آپ ہیونلی ریل میں اپنے انسین خدا سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو ہیو اے پریئر لائف. آپ کو خاندان کے لیے ایک پریئر لائف کی ضرورت ہے. اور جاشوا نے کہا ان سے کہ تم فیصلہ کرو گے کس کی ورشپ کرو گے, مگر وین اٹ کمس ٹو می اینڈ مائی فیملی, اٹس ویری پاورفل ورس, اٹس ویری پاورفل. کہہ لیے اسٹیٹمنٹ واز گیون بائی جاشوا, اور جاشوا نے کہا کہ میں اور میرے گھرانے کی اگر بات ہوگی تو میں اور میرا گھرانہ خداوند کی پرستش کریں گے. می اینڈ مائی فیملی ول سرو دا لارڈ. ہم اپنے خدا کی کیا کریں گے, عبادت کریں گے. وی ول سرو ہم. اور یہ ایک انتہائی, ایک لیڈر جو ہے, ایک قوم کا رہنما تھا. ہی واز اے پولیٹیکل لیڈر. جاشوا واز اے پولیٹیکل لیڈر, ہی واز ناٹ اے پروفیٹ. جاشوا پروفیٹ نہیں تھا. جاشوا واز ناٹ کالڈ ٹو بی اے پروفیٹ. جاشوا واز اے پولیٹیکل لیڈر. He was trained by a prophet. Prophet نے اسے ٹرین کیا تھا, موسیٰ نے, بٹ اس کے پاس prophetic anointing نہیں ہے. اس کے پاس کیا, ایک political leader ہے جسے ٹرین کیا گیا, بنایا گیا, قائم کیا گیا, کھڑا کیا گیا, مگر وہ اس میں بھی قائم ہے خدا کے ساتھ, اور کہہ رہا ہے کہ میں اور میرا گھرانہ کس کی پرستش کریں گے, یہوہ خدا کی. آمین. تو میرے اور آپ کے پاس کون ہے جس کی میں بطور خاندان خدمت کروں, بطور خاندان عبادت کروں؟ وہ یہوہ پاک خدا ہے. آمین. اور اس نے یہ نہیں کہا کہ آئی ول سرو مائی لارڈ, آئی ول سرو مائی گاڈ. اس نے کہا کہ میں اور میرا گھرانہ. یعنی جب ایک رہنما خاندان کا مالک جو ہے, ایک کہہ لیجئے لیڈر جو خاندان کا ہیڈ آف دا فیملی, وہ کوئی ڈیسیجن لیتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ خود کو ایکسکلوڈ نہیں کرے گا, یا اپنے بچوں کو ایکسکلوڈ نہیں کرے گا, وہ اپنی پوری فیملی کو انکلوڈ کرے گا, اور وہ پوری فیملی کو لیڈ کر رہا ہے بطور پریسٹ آف دا فیملی. اور وہ کہتا ہے کہ می اینڈ مائی فیملی, آئی اینڈ مائی فیملی کیا کریں گے, وی ول سرو دا لارڈ. ہم اپنے خدا کی عبادت کریں گے, ہم اس کی سیوا کریں گے, ہم اس کی خدمت کریں گے. اور یہ بات یاد رکھیے گا, یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ جاشوا واز ناٹ اے پریسٹ. Joshua was not a prophet. Joshua was not chosen to be a voice of Lord in that matter or manner. वो क्या था? एक political leader था, वो एक रानमा था, एक जंगी सूरमा था, जिसे खुदा ने मूसा के हाथों ट्रेन किया था. मगर फिर भी वो क्या कह रहा है कि मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं और मेरा घराना, यानी मैं और आप, हम घरानों को लीड करते हैं, हम उनकी रहनुमाई करते हैं, हम उनकी निगहदाश्त करते हैं, हम उन्हें राह दिखाते हैं, हम उन्हें बनाते हैं, हम उन्हें संवारते हैं. और ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मैथ्यू भाई की जिम्मेदारी, जावेद भाई की, मेरी, आपकी, हम तमाम की जिम्मेदारी है कि हम बतौर प्रीस्ट ऑफ द फैमिली अपने खानदान को लीड करें, उन्हें लेकर आगे बढ़े. और यहां पर जाशुआ ने अपने खानदान की जिम्मेदारी ली. ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज ओन फैमिली. उसने उसकी जिम्मेदारी किसी को नहीं दी. उसने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं और मेरा घराना क्या करेंगे, खुदा की सेवा करेंगे. और फिर मैं कह रहा हूं कि वो उसकी कॉल नहीं थी, उसकी बुलाहट नहीं थी इसकी, बट येट उसने ये फैसला किया हुआ था. और दुआ के ताल्लुक से अब जो वो सर्व करना चाहता खुदा को, तो याद रखिए उसकी सर्विस के लिए उस शख्स को प्रेइंग पर्सन होना था, उसे एक दुआया शख्स होना चाहिए, होना था. और उसके लिए उसने अपनी लाइफ को एक प्रेइंग एग्जाम्पल घर में कायम किया हुआ था. हमारे लिए बहुत सी चीजें आसान है, याद रखिए इस दुनिया में हमें बहुत सी चीजें लीड करती हैं, बहुत सी चीजें हैं जो हमें चलाती हैं, एक फर्द को और एक खानदान को. ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं कहने लगा हूं. एक फर्द को और एक खानदान को बहुत सी चीजें चलाती हैं. किसी को जज्बात चलाते हैं, किसी को प्रेशर चला रहे होते हैं. प्रेशर है कई एक चीजों का, बिजनेस का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, अपनी सराउंडिंग का प्रेशर है, हमने अपने अजीजों का प्रेशर है. हमें प्रेशर्स चला रहे होते हैं, हमें इमोशंस चला रहे होते हैं, हमें सोशल नॉर्म्स जो है वो चला रही होती हैं, हमें कल्चर जो है वो लीड करता है और हमें कल्चर चलाता है. यानी बहुत सी चीजें जो हमें मनूवर करने की कोशिश करते हैं, हमें ड्राइव करने की कोशिश करती है. मगर याद रखिए अगर हमें ये तमाम तर चीजें ड्राइव करेंगी तो खुदा हमें ड्राइव नहीं करेगा. खुदा इज नॉट गोइंग टू बी आवर ड्राइवर. वो हमें ड्राइव नहीं करेगा. और अगर ये चीजें हमें ड्राइव करेंगी तो याद रखिए फिर हमें कंफ्यूजन ड्राइव करती है. हमें कंफ्यूजन ड्राइव करेगी तो हमें बर्बादी लेकर जाएगी, हमें तबाही लेकर जाएगी. और इसलिए मुझे और आपको देखना है कि हमें ड्राइव कौन करता है, एक फैमिली को, एक फर्द को ड्राइव कौन करता है. और अगर किसी की जिंदगी को दुआ ड्राइव करती है तो वो पावरफुल फैमिली है, वो पावरफुल फैमिली है. तूफान उसके खिलाफ काम नहीं कर सकते, वो तूफानों में भी कायम रहेगा. और याद रखिएगा फिर कहने लगा जो बात अभी मैं कहने लगा हूं, प्रेयर की प्रेजेंस का मतलब हरगिज ये नहीं है कि स्टॉर्म्स की एब्सेंस है, कि तूफान नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, प्रोसिक्यूशन नहीं है, तकलीफें नहीं होगी. प्रेयर का मतलब है यह सब कुछ होगी मगर प्रेयर आपको कायम रखेगी इनमें. प्रेयर आपकी डायरेक्शन का तयन करती है, डायरेक्शन का तयन करती है, डायरेक्ट करती है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए. हम फैसलों के मामला में, हम डिसीजन और डिसर्नमेंट और डेस्टिनी के ताल्लुक से बहुत फिक्रमंद रहते हैं और कर नहीं पाते. मगर जहां पर दुआ आ जाती है, प्रेयर आ जाती है, हमारी डिसर्नमेंट क्लियर हो जाती है, हमारी डेस्टिनी क्लियर हो जाती है, हमारे डिसीजंस जो है वो पावरफुल हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि प्रेयर जो है इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ योर लाइफ. और एक फैमिली का जो जो कह लीजिए तर्जे हयात है, द वे ऑफ लाइफ, अगर प्रेइंग है तो फिर फैसले, मनाजिल, और फिर उसके साथ साथ हमारी जो इम्तियाज की कुव्वत है वो ठीक होना शुरू हो जाती है. इसलिए नंबर वन याद रखें कि अगर आप बतौर फैमिली हालात से ड्राइव नहीं होना चाहते और चाहते हैं कि आपको दुआ ड्राइव करें तो दुआ करना शुरू करें. जाशुआ ने इतना ताकतवर होने के बावजूद भी दुआ का चुनाव किया है. He was the most powerful person in the nation of Israel, but yet he decided to go in the presence of Lord. उसने दुआ का फैसला किया. जहां तलवार चलानी थी तलवार चलाई है, जहां पॉलिटिकली उसने मनूवर करना था किया था, बट जहां दुआ की जरूरत थी उसने दुआ की है. मैं आपको एनकरेज करूंगा कि हमें बहुत से काम करने हैं इस दुनिया में, बट एट द सेम टाइम हमें अपने खानदान को दुआया खानदान बनाने की जरूरत है. क्यों? क्योंकि जिस खानदान में दुआया मजबा लग जाता है ना, वहां पर खुदावंद की जरूरी होती है. वेयर एवर यू आर गोइंग टू एस्टेब्लिश द ऑल्टर ऑफ गॉड, याद रखिए प्रेजेंस ऑफ गॉड इज गोइंग टू लिव देयर फॉर एवर एंड एवर. खुदावंद की हुजूरी, और जहां पर खुदावंद की हुजूरी आ जाएगी, तूफान, मुसीबतें, दुख, दर्द, हर तरह की जो चीजें हैं वो ढेर होना शुरू हो जाती हैं, वो गायब नहीं होती। सदरक और मेशक और अबदनजू को खुदावंद ने आग में भेजा है, मगर आग में वो खुद भी था। आमीन। तो इसका मतलब है खुदा ने यह नहीं कहा कि मुसीबतें, दुख, तकलीफें नहीं आएंगी, उसने ये कहा कि मैं उनमें तेरे साथ हूँ। आमीन। तो दुआ जो है एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड करती है जो हमारी राहों का तयन करती है, हमें डायरेक्ट कर देती है। इसलिए आइए दुआ करने वाले बनिए। और जशुआ की मैं मिसाल दे रहा हूं, जशुआ एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाता से इंतहाई दुआई आदमी था। कर्नीलियस की तरफ देखिए, इमाल की किताब 10वां बाब, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 10। कर्नीलियस यहूदी नहीं है, जेंटाइल में से था, गैर कौमों में से था, और लिखा कि वो यहूदियों से इंफ्लुएंस्ड था, मुतासिर था। मैं उसका हवाला आपके लिए पढ़ता हूं, मैं चाहूंगा कि आप इसे ध्यान से सुनिएगा कि एक गैर कौम का शख्स जो है वो भी आपसे मुतासिर हो सकता है। मेरी दुआया जिंदगी से, मेरे रवैये से, मेरे किरदार से, मेरे अमल से। इसलिए मुझे जब भी किसी से एनकाउंटर हो तो याद रखिए, आप ये सोचें कि यू आर द ओपन लेटर्स ऑफ क्राइस्ट। आपको लोग पढ़ रहे हैं, आपको लोग रीड कर रहे हैं, आपको लोग नमूने के तौर पर लेंगे कि ये मसीही है, ये क्रिश्चियन है, ये फॉलोअर है यीशु मसीह का। एक खानदान में इन चीजों की बुनियाद रखनी चाहिए। इमाल की किताब 10वां बाब पढ़िएगा, देखते हैं। कैसरिया में कर्नीलियस एक नाम शख्स था, वो उस पलटन का सूबेदार था जो अतालियाती कहलाती है। वो सूबेदार था, सेंचुरियन था, सूबेदार था किसका? पलटन का। और ये अतालियाती था, इटालियन जो कह लीजिए पलटन था उसका सूबेदार था। वो दीनदार था, क्या था? ये नहीं लिखा वो क्रिश्चियन था, ये नहीं लिखा वो यहूदी था, ये नहीं लिखा वो इजरायली था। He was a दीनदार। अब दीनदार के लिए आपको रिलीजियस होने की जरूरत नहीं है। You need not to be religious. You need to practice what God has commanded. आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि खुदा ने क्या कहा। लिखा कि वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत, किसके समेत? पूरे घराने समेत। यानी इसने ये नहीं लिखा कि वो सिर्फ अकेला, लिखा कि पूरे घराने समेत। He was the leader. It means he was a leader. वो लीडर है, वो रानु में अपने घराने का, वो अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था। किससे डरता था? वो अपने सारे घराने, उसकी बेटियां, उसके बेटे, उसकी मां, बाप, अजीज, जितने लोग उसके घराने में थे, वो तमाम के तमाम यहोवा पा खुदा से डरते थे, अपने सारे घराने समेत। और लीडर कौन है? कर्नीलियस इज द लीडर। खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खराद देता था। क्या करता था? यहूदियों को देता खराद किसे था? यानी चैरिटी करता था, गिविंग करता था, और देता किसे था? यहूदियों को। इसका मतलब वो यहूदियों के खुदा से मुतासिर था, यहूदियों के खुदा से इन्फ्लुएंस था। उसे मालूम था कि इनका खुदा ब्लेस करता है, इनका खुदा बरकत देता है। इसलिए जब आप जिंदगी एक बतौर मसीही गुजार रहे हैं तो याद रखिए कि आपके इर्द गिर्द लोग आपके रवैये को पढ़ते हैं कि ये मसीही है, और आपको दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है, दूसरों को ऐसी वाइब्स देनी है कि वी आर ट्रू बिलीवर्स ऑफ क्राइस्ट। और यहां यहूदी लोगों ने उसे मुतासिर किया हुआ था। कोई ऐसे चंद अच्छे लोग होंगे जो दीनदार थे, जिन्होंने दीनदारी इसमें इंप्यूट की है, पैदा की है। वो दीनदार था, अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खिरात देता था। कितनी? बहुत खिरात देता था। और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। क्या करता था? एज ए लीडर, एज ए हेड ऑफ द फैमिली, वो हर वक्त खुदा से दुआ करता था। और याद रखिए, वो खानदान हमेशा मसाइल का शिकार रहते हैं जिनके यहां दुआ की कमी रहती है। और इस शख्स के लिए क्या है? वो खुदा से दुआ करता था हर वक्त। जैसे पालूस ने कह रहा है कि हर वक्त दुआ करो, बिला नागा दुआ करो, विदाउट सीजिंग प्रे बट विदाउट सीजिंग, बिला नागा दुआ करो, हर वक्त दुआ करो, चलते फिरते दुआ करो। दुआ के लिए ना सुबह शाम दोपहर फरियादा गुजारा दाऊद की तरह, यही नहीं है। बट एज ए क्रिश्चियन हमें प्रेइंग पर्सन होने की जरूरत है। लिखा कि वो खुदा से दुआ करता था। और ये जो लफ्ज है ना करता था, इसके लिए जो इंग्लिश का वर्ड है वो है यूज टू प्रे, यानी यूज टू का मतलब है वो आदी था, ही वॉज हैबिचुअल, उसे आदत थी दुआ करने की। हमें आदत है दुआ करने की, हम में से कितने हैं दुआ को आदत बनाए, दुआ को वे ऑफ लाइफ बना ले, दुआ को ओढ़ना बिछोना बना ले। अगर मेरी और आपकी लाइफ जो है बतौर खानदान, अगर हम बतौर खानदान दुआया बुनियादें कायम नहीं करेंगे, तो याद रखिए तूफान हमेशा हम पर गालिब आएंगे, हमेशा गालिब आएंगे। हम कुछ भी क्यों ना हो जाए, हाउ स्मार्ट वी आर, इट डज नॉट मैटर। इफ देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ गॉड, इफ देयर इज नो प्रेयर लाइफ, याद रखिए माई स्मार्टनेस कैन नॉट आउट स्मार्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। द पावर ऑफ प्रेयर कैन नॉट आउट स्मार्ट, कैन नॉट बी आउट स्मार्ट, कभी नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप तूफानों को आउटस्मार्ट करना चाहते हैं तो प्रेयर कीजिए, मुसीबतों को आउटस्मार्ट करना चाहते हैं तो प्रेइंग पर्सन में। क्यों? क्योंकि मुसीबतें दुआ से भागती हैं, मुझसे नहीं डरती, दुआ से डरती हैं। मुझसे उन्हें कोई कह लीजिए खौफ नहीं है, मुसीबतों और दुखों को, उन्हें दुआ से खौफ है, और दुआ जिससे की जा रही है उससे खौफ है। आमीन, आइए बोले हालेलुया। तो दुआ किसी भी घर की सम्मत का तयन करती है कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, क्योंकि वो डिसर्नमेंट देगी आपको। जब आप फैसला ही नहीं कर पाते कि मेरी डायरेक्शन क्या है, तो दुआ जो है वो आपको डायरेक्शन देती। लिखा है कि वो खुदा से डरता और दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा, कहां किस में देखा, इसका मतलब है दुआ करने वाले शख्स को खुदा रोया भी देगा, वो लीड भी करेगा, वो रहनुमाई भी करेगा। लिखा कि तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कौन आया, यानी पावर ऑफ प्रेयर। देखें कि प्रेयर की पावर जो है वो फरिश्तों को एक्टिवेट करती है आपके लिए, खुदा को मुतहरी कर देती है, एक्टिवेट करती है खुदा को, वो भी आपके लिए एक्टिवेट हुआ है, उसने अपने फरिश्तों को एक्टिवेट किया है और वो आपके लिए कुछ करना चाह रहा है। लिखा कि उसने रोया में साफ साफ खुदा के फरिश्ता को देखा और वो क्या कहता, कर्नीलियस, उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावन क्या है, रोया क्या है, रोया हमेशा जागो मीठी आंधी है। यानी असल में ये एक लिटरल एनकाउंटर था, लिटरल एनकाउंटर था विद द एंजल ऑफ गॉड। दुआ खुदा के फरिश्तों को आपके सामने लाके खड़ा कर देती है। उसने उसे कहा, उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावंद क्या है, यानी वो खुदावंद कह रहा उसे। उसने उसे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात, टू थिंग्स, तेरी दुआएं, योर प्रेयर्स एंड योर चैरिटी, योर गिविंग, यादगिरी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची हैं। कहां पर पहुंची हैं? जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा था कि हमारी दुआएं ट्रेशर होती हैं खुदा की हुजूरी में, हमारी दुआएं दे आर गोइंग टू गेट ट्रेजर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और वो कप्स में, जैसे रसूलों का लिखा है, 12 रसूलों ने दुआया प्याले जो था वो खुदा के पांव के नीचे में उंडेल दिए, मुकाशवा की किताब में लिखा है, दुआया प्याले ये मुकद्दसीन की दुआएं थी, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर में उंडेल दिया। योर प्रेयर्स आर गोइंग टू बी ट्रेजर्ड, दे आर गोइंग टू बी कैप्ट बाय गॉड, वो ट्रेजर की जाती है। कोई भी दुआ जो वो कह लीजिए हवा में तहलील नहीं होती, इट्स नॉट गोइंग टू डीकम्पोज इन द एयर, बिलीव करें, वो ट्रेजर होती है। ईमानदारों की दुआएं जो वो जखीरा की जाती हैं और खुदा उन्हें इस्तेमाल करता। लिखा है तेरी दुआएं, एक रानमा की दुआएं, एक खादिम की दुआएं, एक खानदान के बाप की दुआएं खुदावन के हजूर में याद की जाती है। लिखा है तेरी दुआएं, दुआ नहीं है इसका मतलब, कितनी दुआएं उसने की हैं। He was a praying person। हमारे लिए क्या है, हम बहुत मेहनत करते हैं और करनी चाहिए, हम दिन रात मेहनतें करते हैं अपने बच्चों के लिए, करनी चाहिए, मगर याद रखिए इफ वी आर नॉट praying फॉर our फैमिली वी आर डूइंग नथिंग फॉर them। हम उन्हें जो कुछ मर, अच्छी तालीम दे लीजिए, उन्हें अच्छी खुराक दीजिए, अच्छा मुल्क हम उन्हें दिया है, हमने कुर्बानियां की हैं, सेक्रीफाइसेस की हैं, इस जगह पर आ गया, बट इफ वी आर नॉट गिविंग देम ए प्रेयर लाइफ by setting our own examples, believe me, we are not giving them anything. Powerful, long living, everlasting. कुछ नहीं दे रहे। इसलिए आपकी दुआओं को भी खुदा याद रखा, तेरी दुआएं, एक घर के जो मालिक है ना उसकी दुआएं और तेरी خیرات یادگیری کے لیے, کس کے لیے؟ یعنی خدا نے انہیں میمورینڈم بنا دیا ہے, دے آر گوئنگ ٹو بی اے میموریل, کہ تیری دعائیں یادگیری کے لیے خداوند کے حضور میں پہنچ گیا کہ دیکھ خداوند یہ شخص خیرات بھی کرتا تھا, یہ دعائیں بھی کرتا تھا. ایک خاندان اس طرح سے مضبوط ہوتے ہیں, ایک خاندان اس طرح سے کھڑا ہوتا ہے, اور خداوند نے جو دعائیں کرتا ہے, جو خیرات کرتا ہے, خداوند انہیں بلیس اس کے نتیجے میں کر ہی رہا ہوتا ہے, مگر خداوند سپر نیچرلی بلیس کرتا ہے. دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا, اسے دیا گیا and he was giving. وہ دعائیں کر رہا تھا, اس کے لیے بھی لوگوں نے دعائیں کی. But the thing is, جب خدا سے کنیکٹیوٹی ہو جائے نا, تو خدا خود اپنا آپ ظاہر کرنا شروع کر دیتا. اور لکھا تیری دعائیں یادگیری, تیری دعائیں اور خیرات یادگیری کے لیے خدا کے زور پہنچی ہیں. کیوں؟ پھر خدا میں نے اسے کہا کہ جا, شمعون تیرے پاس آئے گا اور تیرے سارے خاندان کو بپتسمہ دے گا, تیرے سارے خاندان کو نجات کی خبر دے گا. یعنی یہ اس غیر قوم کے شخص پر خدا نے قدرت کا کام کیا تھا کہ فرشتے کو اٹھایا, پترس کو اٹھایا, اور کرنیلیس کے خاندان. یہ دعاؤں کی قدرت ہے کہ آپ کے لیے کائنات کی انسین فورسز جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتی ہیں دعا کی وسیلہ سے. ہم اپنی بہت سی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے لیے, مگر دعا خدا کے حضور سے ہمارے لیے استعمال ہوتی ہے. آئیے بولے ہاللویا. اس لیے آئیے دعائیہ زندگی اپنائیں, دعا کو الاؤ کریں کہ خدا میں نے آج تک اپنے خاندان میں دعائیہ مذبح قائم نہیں کیے, بٹ آئی ول ڈو اٹ ناؤ, میں کروں گا. سیکنڈ چیز ہے کہ دعا جو ہے ان چیزوں کو بھی ڈھانپ دیتی ہے جو محبت اور آپ کی محنتیں نہیں ڈھانپ سکتی. ہم محبت پر اکتفا اور بلیو کرتے ہیں, آمین. ہم سب محبت پر بلیو کرتے ہیں, اور ہم اپنے خاندان میں اپنے بچوں سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ٹھیک, شادی تو پہلے میاں بیوی محبت ہوں دی, تو بعد بچوں کی محبت قائم ہو جاتی. یعنی یہ ہمارا ایک کہہ لیجیے ایک نیچرل ٹینڈنسیز ہے دنیا میں. اور یاد رکھیے یہ جو بات ابھی میں نے کی ہے نا, کہ محبت جو ہے یہ آپ کو کور نہیں کر سکتی, دعا آپ کو کور کرتی ہے. لائف میں بہت سے ایسے معاملات ہیں جو معاملات جو ہیں آپ کی ایک دوسرے سے محبت انہیں ڈھانپ نہیں سکتی. آپ بہت سی بدیوں پر, بہت سی برائیوں پر پردہ ڈال سکتے ہیں, مگر دعا ان برائیوں کو مٹانے میں کام کرتی ہے. آپ محبت سے کسی کی برائی چھپا سکتے ہیں, مگر محبت سے اگر اسی کے لیے دعا کریں گے تو وہ برائی صرف چھپے گی نہیں بلکہ مٹے گی. اس لیے آپ اپنے بچوں کے لیے, اپنے ہسبینڈ کے لیے, اپنی بیوی کے لیے دعا میں آئیں, دعا میں آئیں, دعا کرنا شروع کریں. آپ دیکھیے گا دعا جو ہے وہ ڈائریکشن چینج کر دے گی آپ کی, ڈیسیژنس کو چینج کر دے گی, ڈسرنمنٹ کو چینج کر دے گی. اور دعا صرف لفظوں کا تانا بانا نہیں ہے, اٹس ناٹ دا گیم آف ورڈز. دعا کنیکٹیوٹی ہے, رابطہ ہے خدا سے. آپ نہیں بھی بولے تو وہ بھی آپ کی سن لے, نہ بھی آپ بولے تو سن لے. کیوں؟ کیونکہ دعا نے آپ کو کنیکٹ کر دیا ہے. ٹکے نہ لیو پوچھے گا بیٹا چپ کیوں ہے, وجہ کیا ہے, کیوں پریشان ہے. جیسے ہم اپنا بچہ چپ کر کے کونے میں بیٹھ جائے تو جا کے پوچھنے کہ بیٹا کیا ہے, کیا کوئی مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے, کیا چل رہا ہے, واٹس گوئنگ آن. اور بلیو می, دس از ہاؤ گاڈ ٹریٹس اس. اور وہ بھی آگے خاموشی سے آپ سے کہے گا بیٹا کیا مسئلہ ہے, کیا چل رہا ہے, واٹس گوئنگ آن. اور یہ کب آتا ہے؟ جب کمیونیکیشن اتنی اچھی ہو کہ آپ کا گونگا رویہ بھی خدا کو سب کچھ سمجھنے پر مجبور کر دے. آپ اپنے خاندان کے لیے کچھ بھی نہ کہیں, اندر سے چل رہے ہو, خدا سن رہا ہو, اور آ کے کہے بیٹا فرشتے تیرے لیے میں بھیج رہا ہوں, بیٹی فرشتے تیرے لیے بھیج رہا ہوں. اور یہ سبھی کچھ کرنیلیس کے ساتھ اس نے کیا, جاشوا کے ساتھ اس نے کیا. اور یسوع مسیح کی آخر میں اگزامپل دوں گا, یسوع مسیح نے ایک فیملی بنائی, ہی واز ناٹ میرڈ بٹ اسپرچولی ہی از اے, وہ ہمارا ہسبینڈ ہے, وہ ہمارا گروم ہے, بائبل مقدس کے مطابق وہ دل ہے. اس نے اس دلہن کو خریدا ہے, خون بہا کے خریدا ہے. اور یوحنا 17 باب, دا موسٹ فیورٹ چیپٹر ہے یوحنا 17, اسے ہائی پریسٹلی پریئر کہتے ہیں. پورا چیپٹر یوحنا 17 جو ہے, جان 17, یہ یسوع مسیح کی دعا ہے. यीशु मसीह ने ढेरों जगह पर दुआ की है, मगर वो जो यूहन्ना 17 वाली दुआ है ना, वो खानदान के लिए दुआ है। उसने अपने खानदान के लिए प्रेयर की है। यीशु मसीह ने, मैं सुनिएगा, मैं आप इसे क्लोज करता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि वक्त ज्यादा हो रहा है, बट आई वॉन्ट टू क्लोज इट और वॉन्ट टू एम्पावर यू कि आप उस दुआ को जरा ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना 17वां भाग, अगर आप निकाल सकते हैं तो प्लीज टेक इट आउट, टर्न विद मी टू द बुक ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17। और इसी के साथ मैं आखिरी बात करके इसे क्लोज करूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि आप इसे जरूर पढ़िए। यूहन्ना 17वां भाग जी, लिखा कि यीशु ये बातें, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ए बाप, वो घड़ी आ पहुंची अपने बेटे के जलाल को जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे, चुनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया। अपने बाप से बात कर रहा है, कम्युनिकेशन है, दुआ है, ताकि जिन्हें तूने मुझे बख्शा, सुनिएगा, जिन्हें तूने मुझे बख्शा उन सबको वो हमेशा की जिंदगी दे। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने, जो काम तूने मुझे करने को दिए उसको तमाम करके मैंने उस जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। अब बाप तू उस जलाल से जो दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना ले। दुआ की जा रही है, मैंने तेरे नाम को इन आदमियों पर जाहिर किया, किन पर? अपने बच्चों पर, शागिर्दों पर, जो खानदान मैंने बनाया, मैंने तेरे नाम को इन पर जाहिर कर दिया। मुझे अपने खानदान पर अपने यीशु मसीह को जाहिर करना चाहिए। आमीन। मैंने तेरे नाम को इन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें तूने दुनिया में से मुझे दिया, वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और तूने तेरे और तूने उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया। अब वो जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया वो सब तेरी तरफ से है, यानी हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारा हस्बैंड, खुदा की तरफ से है, क्योंकि जो कलाम तूने मुझे पहुंचाया वो मैंने उनको पहुंचा दिया। यानी एक रानुमा कहता है कि जो तूने मुझे करने के लिए दिया था मैंने उन्हें दे दिया करने के लिए, उन्होंने उसको कबूल किया और सच जान लिया कि मैं तेरी तरफ से निकला और वो ईमान लाए कि तूने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए दुरखास्त कर रहा हूं, सुनिएगा, दिस इज द पॉइंट आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू, मैं उनके लिए दुरखास्त करता हूं, मैं दुनिया के लिए दुरखास्त नहीं करता। सुनिएगा, यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं उनके लिए दुरखास्त करता हूं जो तूने मुझे दिए हैं, मैं दुनिया के लिए दुरखास्त नहीं कर रहा। दुनिया ली दुरखास्त करने लिए बहुत सारियां कर लिया, मगर यह वक्त अपने खानदान के लिए दुआ करने का, यह वक्त अपनी फैमिली को प्रेयर में रखने का। मैं दुनिया जानते ही दुआ करता रहा, अगर मैं अपने बच्चों के लिए दुआ नहीं कर रहा तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा। और यीशु मसीह ने जॉन 17 में अपने खानदान के लिए दुआ की है, इसलिए उसने कहा कि मैं दुनिया के लिए, आई एम नॉट प्रेइंग फॉर द वर्ल्ड, आई एम प्रेइंग फॉर द पीपल, दोज हू यू गेव मी, जो तूने मुझे दिए हैं। लिखा, मैं उनके लिए दुरखास्त करता हूं, मैं दुनिया के लिए दुरखास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया। मेरे और आपके बच्चे खुदा की तरफ से दिए गए हैं, मुझे उनके लिए दुआ करनी चाहिए। दुनिया के लिए कोई और वक्त होगा करने के लिए, मगर मेरे और आपके पास ऐसा वक्त होना चाहिए कि हम अपने खानदान को दुआ में रखें। और यीशु मसीह ने बाप की हुजूरी में खड़े होकर कहा कि मैं दुनिया के लिए नहीं करता, सानू दुनिया की फिक्र है और अपना घर गवा लेने, लोगों नू अपड़ाउंदे रहे हैं मंजिल ते, अपने विच तूफाने उम्र गुजार ले। और अगर ऐसा है तो यकीन जानिए हम अपने खानदान को कभी भी सुरखरू होता नहीं देख सकते। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। अगर यीशु मसीह जैसा शख्स जो है, जो खालिक है, मालिक है, कादर मुतलिक है, अगर उसे दुआ की जरूरत है अपने बच्चों के लिए, तो मुझे कितनी जरूरत है, आपको कितनी जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा, मैं उनके लिए दुरखास्त नहीं करता जो दुनिया के लिए, बल्कि उनके लिए जो तूने मुझे दिए और वो तेरे हैं, और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। मैं आगे को दुनिया में ना हूंगा मगर ये दुनिया में है, सुनिए, मैं आगे को दुनिया में नहीं हूंगा मगर ये दुनिया में है। मैंने कल चले जाना है, आपने चले जाना है, बच्चों ने दुनिया में रहना है। और उनके लिए यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं कि आई एम गोइंग टू बी असेंडेड, माय टाइम इज कमिंग, इट्स अप नाउ, आई हैव टू गो, बट बिफोर आई गो आई नीड टू पुट माय पीपल, पुट माय डिसिपल्स, पुट माय किड्स इन द प्रेजेंस एंड इन द हैंड्स ऑफ गॉड। और वो कह रहा है कि मैं इन्हें तेरे हाथों में दे देता हूं, मैं जा रहा हूं। दैट्स हाउ वी नीड टू प्रे कि खुदा मेरे बच्चों को संभाली, मेरे बच्चों की खिदमत, मेरे बच्चों के काम, इन्हों की जिंदगी, इन्हों की बीवियां, इन्हों के हस्बैंड, इन्हों के काम कारोबार, सबकी तो फिक्र करना। जो कुछ मेरा वो सब तेरा है, मैं आगे को दुनिया में ना होगा मगर ये दुनिया में है, और मैं तेरे पास आता हूं। ऐ कदूस बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा, इनकी हिफाजत कर। आमीन। इनकी क्या कर? अपने बच्चों की हिफाजत अपने बाप से करवाएं। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं, आइए अपने सरों को झुकाएं और कहिए, खुदावंद यीशु नासरी, हम तुझसे चाहते हैं कि हमें एक ऐसा दुआया खानदान बना जिससे शुक्रगुजारियां कम ना हो। खुदावंद आसमानी बाप, हम पर रहम कर, खुदावंद हम पर फजल कर दे। खुदावंद हम जानते हैं कि जाशुआ ने दुआ पर इक्तफा किया, उसकी डिपेंडेंसी प्रेयर पर थी, कर्नीलियस की डिपेंडेंसी प्रेयर पर थी, और यीशु मसीह का इन्हसार भी दुआ पर था। वह उन तमाम ने अपने अपने खानदानों के लिए दुआ की है। एक मियां को, एक बीवी को दुआया पर्सन बनने की जरूरत है, दुआ में आने की जरूरत है। आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आप उनके लिए कमा रहे हैं, अगर आप दुआ नहीं कर रहे तो आप उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर रहे। आप उनके उन्हें दुनियावी तौर पर तो सब कुछ दे रहे हैं, मगर रूहानी तौर पर उनकी प्रोटेक्शन नहीं है। याद रखिए, हमारे बच्चे गलत फैसला करेंगे, गलत फैसलों में जाएंगे, क्यों? क्योंकि दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय प्रेयर्स। आइए अपने बच्चों को, अपने खानदान को दुआया खानदान बनाएं, अपने घरों में मस्बे लगाए हैं दुआया, कहिए खुदा मुझे मुआफ कर, मैं आइंदा को खुदा दुआया जिंदगी गुजारूंगा गुजारूंगी। मैं अपने बच्चों को सब कुछ दे रहा हूं, रोज आधा घंटा उनके लिए दुआ में भी गुजारूंगा गुजारूंगी। खुदा मैं तेरे पास आऊंगी आऊंगा ताकि मेरे बच्चे महफूज रहे। अय्यूब हर रोज खुदा से दुआ करता था और वो साला बसाल अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां देता था और उन गुनाहों की भी कुर्बानियां देता था जो उनसे नहीं हुए थे। अय्यूब खुदा उनसे कहे, खुदा मुआफ कर, हमें फजल दे। मैथ्यू भाई के लिए, सिस्टर नेहा के लिए, हम तमाम अपने खानदानों के रहनुमा हैं, हम कहानत का काम करते हैं, हम प्रीस्ट हैं खानदान के। आइए दुआ को अलाउ करें, दुआ को इजाजत दें कि ये खुदावंद, जहां मैं सब कुछ अपने बच्चों के लिए करता हूं, मैं गाड़ी चलाते हुए अपने बच्चों के लिए कुछ टाइम निकालूंगा, मैं लोगों को मशवरे इतने देता हूं, लोगों की काउंसलिंग करता हूं, लोगों की नेक नियति से मदद करता हूं, अपने काम कारोबार पर फोकस करता हूं, खुदा मैं तुझसे भी राबता रखूंगा ताकि तू मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट करे। मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कला, मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम, के ओ ते अपने बंदे आनाल आखलो कनाल तमाम, के ओ